आज है 12 नवंबर दिन शनिवार। स्वागत है आपका इंडिया बोल में। मैं हूँ सुशीला सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काला धन पर लगाम लगाने के लिए 500 और 1000 के नोट पर लगाई रोक। विपक्षी पार्टियों ने की सरकार के कदम की आलोचना, तो लोगों को हो रही है कुछ परेशानी। बैंकों और एटीएम के बाहर लगी लंबी कतारें, तो कहीं से आई खबर कि लोगों ने नष्ट किए 500 और 1000 के नोट। दावे किए जा रहे हैं कि इससे महंगाई कम होगी, लेकिन क्या लगेगी इससे काले धन पर लगाम? इसी मुद्दे पर होगी इंडिया बोल में बहस। बस थोड़ी ही देर में, पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। भारत में 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए जाने के 4 दिन बाद लोगों का कहना है कि उनकी माली हालत अब खराब होने लगी है। लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए सामान उधार लेना पड़ रहा है। बैंकों और एटीएम पर लंबी कतारें लगी हैं। पुराने नोट बदलने और जमा करने के लिए लंबी कतारों में लगे लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोगों से सब्र से काम लेने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अगले 2-3 सप्ताह में सभी एटीएम सुचारू रूप से चलने लगेंगे और लोगों को बड़े नोट भी मिलने लगेंगे। एटीएम मशीनों में हो रही दिक्कतों पर उन्होंने कहा,
जो एटीएम मशीन्स हैं, उनको पहले रिकैलिब्रेट नहीं किया गया। अगर आरंभ में ही हम रिकैलिब्रेट कर लेते और इसमें हजारों लोग लगते हैं, तो फिर सीक्रेसी नहीं रहती। इनमें पैसा डालना, इनको रिकैलिब्रेट करना, इनका पुराना कैलिब्रेशन था कि पुराने 100 रुपए, 500 रुपए और 1000 रुपए के लिए ये कैलिब्रेटेड थे, और इसमें टेक्नोलॉजी में समय लगता है 2-3 सप्ताह का, और इसलिए एक ये चैलेंज है कि इसके रिकैलिब्रेशन में अगले कुछ दिन लगेंगे, जब तक धीरे धीरे ये मशीनें सारी रिकैलिब्रेट होंगी।
ये थे भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में लाखों प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति पार्क ग्वेन हे के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आयोजकों का कहना है कि करीब 10 लाख लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, हालांकि पुलिस ने यह संख्या काफी कम बताई है। बीते 3 सप्ताहों में ये तीसरी सबसे बड़ी रैली है और राष्ट्रपति पार्क ग्वेन हे पर राजनीतिक दबाव बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति और उनके विवादित राजनीतिक गुरु चोय सून सिल के संबंधों को लेकर गुस्से में हैं। फिलहाल हिरासत में रह रहे चोय पर राष्ट्रपति को प्रभावित करने के आरोप हैं। चीन का कहना है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए डोनाल्ड ट्रंप के पर्यावरण के मुद्दे पर रुख बदलने के बावजूद जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। मोरक्को में चल रही वार्ता में चीनी प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य ने कहा कि चीन जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर सक्रिय भूमिका निभाता रहेगा। चीन और अमरीका दोनों ने ही जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर हुए पेरिस समझौते को समर्थन दिया है, लेकिन अमरीका के राष्ट्रपति चुने गए डोनाल्ड ट्रंप ने जलवायु परिवर्तन को छलावा बताया था। अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर हुए आत्मघाती हमले में 4 लोग मारे गए हैं और 14 घायल हुए हैं। यह अफगानिस्तान में अमरीका का मुख्य सैन्य अड्डा है। नेटो ने मारे गए लोगों की राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी नहीं दी है। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी संस्था का कहना है कि वह दक्षिणी सूडान के येई शहर में शरणार्थियों के अपहरण और हत्याओं से चिंतित है। UNHCR का कहना है कि पड़ोसी देश सूडान से आए 2 शरणार्थियों की हथियारबंद समूहों ने हत्या कर दी है। बीबीसी समाचार।
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस
आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल।
बीबीसी इंडिया बोल।
लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान बीजेपी ने नारा दिया, काला धन वापस लाएंगे, लोगों के खातों में 15 लाख जमा किए जाएंगे। बाबा रामदेव ने भी इसे मुद्दा बनाया। सत्ता में बीजेपी आई, 1 साल बीता, 2 साल बीता, विपक्ष के साथ साथ लोगों ने उठाए सवाल, कब वापस आएगा काला धन? करीब 2.5 साल बाद 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक 500 और 1000 के नोटों को विमुद्रीकरण या चलन के से बाहर करने की घोषणा की। नरेंद्र मोदी का कहना था कि इस फैसले से देश में जमा काले धन से मुक्ति मिलेगी और चरमपंथियों को मिलने वाली आर्थिक मदद बंद होगी। इस घोषणा के बाद लोगों के बीच बेचैनी दिख रही है। बैंकों और एटीएम के बाहर 500 और 1000 के नोट जमा कराने और नए नोट लेने के लिए लंबी कतारें हैं। कुछ जगहों पर अफवाहें ये भी उड़ी कि नमक की कालाबाजारी हो रही है। खबरें ये भी आ रही हैं कि लोग सोना खरीद रहे हैं और सोने की कीमत आसमान छू रही है। इधर राजनीतिक खेमे में भी हलचल मची हुई है। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि सरकार ने अपने लोगों को पहले ही इस कदम की जानकारी दे दी थी, तो उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा इस फैसले का विरोध कर रही है। क्या इससे काले धन पर लगाम लगेगी? विदेश में जमा काला धन कैसे वापस आएगा? इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा और क्यों नाराज हैं विपक्षी पार्टियां? इन सभी मुद्दों पर एक एक करके हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ स्टूडियो में है वरिष्ठ पत्रकार सुषमा रामचंद्रन और श्रोता भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। हमें मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर। सबसे पहले प्रारंभिक टिप्पणी आपसे लेना चाहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार सुषमा रामचंद्रन जी से लेना चाहेंगे। ये बताइए कि ये जो अचानक घोषणा की गई और एक पैनिक दिखाई दे रहा है, हालांकि लोग दिसंबर 30-2016 तक बैंकों में जमा और नोट जो है ले सकते हैं, लेकिन फैसला लागू करने से पहले क्या और समय दिया जाना चाहिए था?
देखिए, ये जो कदम लिया गया सरकार ने, ये मैं समझती हूँ बहुत अहम कदम है और इससे काला धन का जो सिलसिला है उसके ऊपर काफ़ी इसका काफ़ी असर होगा। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि ये जो जिस तरह से उन्होंने तैयारी की है, मुझे लगता है तो इसमें काफ़ी शॉर्टफॉल्स हैं, काफ़ी लैक्यूना हैं इसकी तैयारी में। और ये जो जो हम आजकल देख रहे हैं कि लोग इतनी कतारें हैं ATMs के सामने, बैंक्स के सामने, और डर सा लगा हुआ है। लोग जो मतलब उनके घर की जो उन्होंने सेविंग्स की हुई है, बचाए हुए पैसे हैं, वो बाद में भी दे सकते हैं। 30 दिसंबर का टाइम है, टाइम तो काफ़ी है,
उसके बाद RBI दे सकते हैं,
तो वो टाइम है। लेकिन डर की वजह से वो अपना सारे जो पैसे घर में पड़े हैं वो जाके जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये बात है, दूसरी बात ये उनको ज़रूरी भी है कि उनको रोज़मर्रा की जो चीज़ें खरीदने के लिए, अगर आप सब्जी दाल खरीदने के लिए जाएं तो आपको कैश की ज़रूरत है। और कई लोग तो आजकल उधार दे रहे हैं, अगर आप जाएं तो शायद मदर डेयरी भी उधार दे रहा है, लेकिन हर कोई नहीं उधार दे रहा। और ये दिल्ली जैसे शहर में हमारे पास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम कार्ड्स वगैरह से पैसा दें, लेकिन अगर आप दूर दराज के इलाकों में जाएं तो वहाँ पर नहीं है। तो मैं समझती हूँ ये कदम तो अच्छा है, लेकिन उनकी इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है बहुत ही फॉल्टी है, बहुत ही इसमें काफ़ी सारी खामियाँ हैं और इसी वजह से ये तकलीफें आ रही हैं आम जनता को।
तो सरकार को इस घोषणा करने से पहले मोटे तौर पर तैयारी करनी चाहिए थी, जो उस तैयारी में कमी दिख रही है। हमारे साथ श्रोता जुड़ रहे हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन लाइन पर है। जी, अपना नाम बताएं। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं।
हेलो
जी, अपना नाम बताएं।
जी, मैं मोहम्मद वारिस बोल रहा हूँ, लुधियाना से, बल्कि मैं बिहार से बोल रहा हूँ।
जी मोहम्मद जी, बताएं, आप पूरी चर्चा सुन रहे हैं?
जी हाँ, मैं तो सुन रहा हूँ आपका चर्चा।
जी, आपको किसी तरह की परेशानी आ रही है?
मैडम,
आप वहाँ क्या देख रहे हैं? आप बिहार में हैं, आपने लुधियाना भी बोला मुझे, तो मुझे समझ में नहीं आया कि आप कहाँ पर हैं अभी मौजूद।
जी मैं बिहार में हूँ, सीतामढ़ी जिले से, और अजवारा मुसरनिया से मैं बोल रहा हूँ।
जी
मैडम, मैंने देखा हूँ इतना बैंकों में इतना भीड़ चल रही है, कि काफी आदमी परेशान हो रहे हैं, किसी के पैसे गुम हो गए, किसी के गिर गए हैं, इसमें तकलीफ आम जनता की बहुत ज्यादा हो रहे हैं।
और परेशान क्यों है मोहम्मद भाई यहाँ पर, वहाँ पर लोग, ये बताइए क्या कहना है वहाँ पर लोगों का?
उस वहाँ पे कहना है कि मैं बैंक में नंबर लगाए हुए हैं, लाइन लगाए हुए हैं, पैसे मुझे मिल नहीं रहे हैं, इतना दिक्कत हो रही है पैसे के लिए। कोई सामान खरीदना है तो कोई दे नहीं रहे सामान, अगर 500 के बोला कि 500 में सामान हो तो मैं दे रहा हूँ सामान।
तो दिक्कतें पेश आ रही है। जी,
इतनी सारी दिक्कतें आ रही हैं, अगर आम जनता को इतना दिक्कत आएंगे तो क्या बताए, किसी को खाने के लिए भी पैसे नहीं रहेंगे, इसलिए कि पैसे तो सारे बैंक में जमा कर रहे हैं, तो बैंक में जमा कर रहे हैं तो कहाँ जाएंगे अगले को पैसे।
तो मोहम्मद जी, क्या होना चाहिए था, आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, कैसे ये जो है लागू कैसे होना चाहिए था?
मैडम ऐसा है ना कि आम जनता को दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस हिसाब से लागू होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आम जनता को इतना दिक्कत हो कि पता नहीं किसी को खाने के लिए सही से नहीं मिल रहे हैं, तो पैसे की दिक्कत इतनी आ रही है कि कोई सामान नहीं दे रहे हैं। ये तो नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए कि हमें आम जनता को कैसे रहना चाहिए, किस हिसाब से रहना चाहिए, कि हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
जी, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद। अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। जी, अपना नाम बताएं।
जी सर, मैं अवनीश कुमार यादव, ग्राम गोना पोस्ट भानपुर जनपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ मैम।
जी अमरीश, आपने मोहम्मद की बात सुनी, वो बोल रहे हैं कि वहाँ पर खासी परेशानी आ रही है, लोगों को नोट नहीं मिल पा रहे हैं। आप बताइए कि आप जहाँ पर है वहाँ पर किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं?
जी मैम, बहुत परेशानी हो रही है इस समय बैंकों में। आज सुबह से मैं गया, मेरे यहाँ शादी है, लेकिन एक पैसा मतलब गया, लाइन लगाया, न पैसे मिल रहे हैं, जमा तो हो जा रहे हैं लेकिन मिलने में बहुत परेशानी हो रही है। पैसे आइए नहीं बैंक में, लुक कर रहे हैं, पैसा आइए नहीं है, आइए नहीं पैसा।
लेकिन नरेंद्र मोदी का कहना है कि काले धन पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाया गया है, तो इस पूरे कदम को कैसे देखते हैं आप?
नहीं मैम, काले धन पर लगाम लगाने के लिए ये तो विदेश से पैसा ला नहीं पाए, अब यहाँ अपने इंडिया में काले धन के लिए बात करते हैं, लेकिन हम लोगों को तो नहीं समझ पा रहा है काले धन आएगा कैसे आएगा।
जी लेकिन आपको नहीं लगता अमरीश की कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए? अगर भारत में ही पहले जो काला धन है वो बाहर आए, उस पर लगाम लगे?
नहीं, लगाम साहसी कदम तो है प्रधानमंत्री जी का, लेकिन अरे कदम के लिए, अरे जनता जो मतलब परेशान हो जा रही है, किसी को दवा नहीं मिल पा रहा है, कोई जा रहा है दुकान पे, अब नमक के लिए लूटमार मची हुई है और मार्केट में, तो ये सब जो कदम सरकार जो चुन रही हो ठीक है, लेकिन आप पहले व्यवस्था बनाए होते बैंक में, पैसे की व्यवस्था आ गई होती तब होता। अब तो सीधे जनता मतलब एकदम इतना से वो युद्ध हो रहा है पैसे के लिए।
जी युद्ध हो रहा है पैसे के लिए। अमरीश जी, अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुषमा जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि भारत में करीब 10 लाख बैंक के ब्रांचेज हैं और कई गांव ऐसे भी हैं भारत में जहां पर बैंक है ही नहीं। जनधन योजना या डिजिटल पेमेंट की अभी बात की जाए तो ये अभी काफ़ी नई चीज़ें हैं। ऐसे में गाँव वालों की मुश्किलें ये हैं कि उनके पास 500 और 1000 के नोट हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इसके बारे में सोचा जाना चाहिए था? जैसे आपने बात भी की इम्प्लीमेंटेशन की जो है कमी है, तैयारी होनी चाहिए थी, लेकिन इन गांव वालों का क्या कि मेट्रोपॉलिटन शहर, बड़े शहरों में तो आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, पर इन गांव वालों का क्या जहां पर बैंक तक नहीं है?
देखिए, इनकी दिक्कत, उन्होंने एक चीज बोली कि वहां शादी हो रही है। अब हमारे देश में कहीं भी गांव में जाइए, शहर में जाइए, तो शादी के लिए तो आपको पैसा देना पड़ता है और कैश देना पड़ता है। आप हर चीज़ के लिए, आप तंबू लगाएंगे, आप खाने के लिए पैसे देंगे, तो हर चीज़ जो खरीदारी करेंगे उसमें लिए उसके लिए कैश चाहिए होता है। और वो ठीक कह रहे हैं, कहते हैं हम ये पैसा जो हमारे पास है, जो शायद हमने ही बैंक से निकाला, हम जमा तो करा रहे हैं लेकिन वापस फिर निकालेंगे कैसे? वापस निकालने के लिए कोई तरकीब नहीं है। तो इसके लिए तो सरकार को सोचना चाहिए था कि लोगों को ये इमरजेंसीज में ये जो बल्क कैश चाहिए है उसके लिए कुछ इंतज़ाम करना चाहिए था। अब जैसे दूसरी बात ये है, उन्होंने कहा दवाई, अब गवर्नमेंट सरकारी जो अस्पताल हैं, इन क्लिनिक्स, उसमें उन्होंने कहा ओ कि ज़रूर 500-1000 के नोट्स लेंगे, लेकिन प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस उसमें नहीं ले रहे। तो जहां हमारे देश में कितने सब लोग प्राइवेट ही में ही जाते हैं क्योंकि जो सरकारी अस्पताल हैं बहुत क्राउडेड हैं। तो ये एक चीज़ इनकी बिल्कुल खामियां जो पहले हमने कही थी। पर तीसरी बात ये है कि इनको याद है जो नरेंद्र मोदी ने कहा था अपने ये चुनाव से पहले कि हम 15 लाख आपके जमा कराएंगे आपके अकाउंट से, तो वो कह रहे हैं वो हमारा पैसा कहाँ गया, वो तो पैसा नहीं आया बाहर से बल्कि हमें और तकलीफ दी जा रही है। तो आपके समझाने के बावजूद भी वो अपनी ही तकलीफ़ों के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि इसके इस वक्त तो उनको बहुत ज़्यादा वो क्राइसिस में है।
मैम, किस तरह की तैयारी होनी चाहिए थी सरकार को, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए था ये घोषणा करने से पहले?
देखिए, पहली बात तो ये है, ये जो करेंसी है वो कह रहे हैं कि कई महीनों से ये प्रिंटिंग हो रही है, तो ये प्रिंटिंग भी बहुत सीक्रेसी से होती है। हमारे देश में मिंट का जो है प्रिंटिंग सीक्रेसी से होती है, तो वो हुआ होगा, लेकिन असल में जो लॉजिस्टिक्स है, लॉजिस्टिक्स वहाँ से RBI से हर बैंक तक जाता है और बैंक से हर बैंक अपने हर ब्रांच में ले जाता है, हर ब्रांच अपने ATMs में देता है। तो ये जो करेंसी का जो मूवमेंट था, ये पहले 2-3 दिन पहले से ही या 4-5 दिन पहले से ही शुरू किया जाना चाहिए था कि भाई इससे अब तक हमारा ATMs के पास एक रात पहले हमारा करेंसी तैयार है यहाँ पर डालने के लिए। दूसरा, ये जो सेंसर्स की जो बदलाव की बात है, जो वो कह रहे हैं 2-3 हफ्ते, अब 2-3 हफ्ते तो बहुत लंबा टाइम है, आपको पहले इसका मतलब है कि कम से कम 1 हफ्ते पहले ये शुरू कराना चाहिए था। और अगर इतनी सीक्रेसी से आप यह नहीं कर सकते तो फिर आपको ये कदम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इतनी तकलीफ अगर आप आम जनता को देने जा रहे हैं तो इससे आप मतलब इट डज नॉट जस्टिफाई।
लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले जो भी कदम उठाए जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं तो तकलीफ होती ही है। ऐसा नहीं है कि सब बहुत खुशी से जो है हर कदम को जनता ले लेती है कि हाँ ये अच्छा निर्णय है।
नहीं, पर ये ऐसा कदम ऐसा है कि जिसमें आपकी किसी की मौत भी जा सकती है। अगर आप किसी अस्पताल में पैसे नहीं दे सकते, आप इलाज नहीं कर सकते, तो आपकी जान भी जा सकती है। तो इसके लिए कोई उनको कोई रास्ता सोचना चाहिए था कि ऐसे इमरजेंसीज आएंगे उसके लिए क्या होगा। शायद एक स्पेशल फैसिलिटी बना देते हर बैंक में, जो लोग क्राइसिस में हैं वो आपके पास आएं और इसके लिए वो खास उनको ज़्यादा पैसा दे दें, जो मेडिकल क्राइसिस में है या शादी का जो प्रॉब्लम है, ये सम जो कोई क्राइसिस फैसिलिटी होना चाहिए था।
तो इसके बारे में सोचा जाना चाहिए।
बिल्कुल,
था
बिल्कुल।
जी, अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। जी, अपना नाम बताएं।
जी, मैं बिहारी पांडे बोल रहा हूं।
जी, आपका नाम मैं सुन नहीं पाई हूँ, दोबारा बताइएगा।
जी मैम, मैं और बिहारी पांडे बोल रहा हूँ।
जी
जी, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर यूपी।
जी
जी मैम, ये है कि जो बैंक पे इतनी भीड़, इतनी दिक्कत हो रही है, इससे वो जो भी है काला धन या जो भी आएगा, लेकिन आम लोगों से इसको फायदा जरूर है, लेकिन इतना कठिनाई हो रही कि जिससे आप अगर देखेंगे शायद कि कई कई जगहों पर पेट्रोल पंप वाले अलग मनमानी कर रहे हैं, दुकानदार अलग मनमानी, कोई कह रहा है कि अगर आप 500 दीजिए हम आपको 300 देंगे।
तो क्या आपके आपके सामने भी ऐसी कोई दिक्कतें पेश आई?
जी जी, कई बार हमने तो देखा, हमारे साथ में नहीं लेकिन हम कल गए थे, आज भी देखा, हमारे सामने 2-3 मैटर तो हमने खुद देखा है सर।
जी, क्या देखा आपने?
ये है कि आप ठीक है, अगर आपको 500 नहीं चल रहा है आप हमको 500 दीजिए, हमसे 300 लीजिए। अभी इस तरह का कई बड़े दिक्कत हो रही, बहुत लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, और ज्यादातर यही है अब काला बाजारी, अब ये तो अलग सिस्टम बन गया है।
लेकिन जो कदम उठाया गया है इसे किस तरह से देखते हैं आप? नरेंद्र मोदी ने कहा कि काला धन पर लगाम लगे, और उन्होंने जो वादा किया था चुनाव प्रचार के दौरान कि काला धन पर लगाम लगाएंगे, और उसी के तहत एक कदम उठाया गया है।
जी जी मैम, ये तो बहुत बढ़िया कदम है, ये बहुत साहसिक कदम है, इसका परिणाम जो भी हो, लेकिन ये एक नेतृत्व क्षमता उनके अंदर अच्छी है। ये है कि हम फैसला कड़ा फैसला लेंगे, जो इसका असर जो भी जाए।
जी, अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं हमारे साथ अगले कॉलर कौन है। जी जी, अपना नाम बताएं।
जी लुम्बा राम।
जी लुम्बा राम, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
जी ग्राम रंगाला, तहसील बागोड़ा, जिला जालौर, राजस्थान से बोल रहा हूँ।
जी राजस्थान से बोल रहे हैं, वहाँ पर बीजेपी की ही सरकार है। ये बताइए कि नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा की, वहाँ पर इस घोषणा को किस तरह से लिया जा रहा है?
घोषणा को तो मैम मतलब जैसे पढ़े लिखे युवा वर्ग है जो भी है वो इस बात को मतलब ठीक से ले रहा है, मतलब अच्छी ये बात अच्छी है कि भाई जो नोट ये बंद कर रहे हैं तो इसमें कालाबाजारी भी रुकेगी, मगर किसान वर्ग है ना इसमें सबसे ज्यादा परेशान हो रहा है अभी।
किसान कैसे परेशान है?
क्योंकि उनको अभी सीजन चल रही है, जैसे अब जीरा है, फसलें बोनी है ना मैम,
बीज लेने हैं,
बीज लेने हैं, खाद लेनी है, तो उनको पैसे तो उनको मतलब ले रखे हैं उन्होंने, किसी के पास 50,000 है, किसी के 30,000 है, तो अब उनको दुकान वाले जा रहे हैं तो दुकान वाले ले ही नहीं रहे, तो उनमें सबसे अब बैंक में जा रहे तो एक घंटों लाइन खड़ी रहना पड़ता, फिर भी उसको नहीं, रात भी वहीं रुकना पड़ता, इतनी परेशानी है मैम।
तो परेशानी आ रही है। लुम्बा राम जी, अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुषमा जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि हाल ही में शोध में पता चला है कि काला बाजार करीब 30 लाख करोड़ से ज्यादा का है, या कहें सकल घरेलू उत्पाद का 20% है, और ये थाईलैंड और अर्जेंटीना के सकल घरेलू उत्पाद या GDP से तुलना की जाए तो कहीं ज्यादा है। ऐसे में ये लोग अपनी आय की जानकारी देंगे, क्या ये लोग सामने आएंगे जो कदम उठाया गया है, क्योंकि इन्हें पहले भी मौका दिया गया था कि वो 30 सितंबर तक अघोषित आय की घोषणा कर दें।
तो पहले वो तो एमनेस्टी स्कीम थी, अब ये जैसे वित्त मंत्री ने कहा ये एमनेस्टी स्कीम नहीं है, लेकिन अगर लोग वहाँ पर जमा कराना चाहते हैं, देखिए इसमें दो तरीके हैं, अगर आपके पास काला धन है, अगर आपके पास 10 करोड़ है, और एक तरीका ये भी है कि चलिए आप कहते हैं कि हम जमा नहीं कराएंगे नहीं तो टैक्स वाले हमें पकड़ लेंगे, तो हम चाहेंगे कि हम कुछ सोना खरीद लें या हम कुछ ज़मीन खरीद लें, कोई फ्लैट खरीद लें, तो इसमें आपको आप तब भी आपको ये जो 500 और 1000 के जो नोट हैं वो आप ये जो ज्वेलर है या रियल एस्टेट का जो एजेंट है उसको देना पड़ेगा, वो जो बंदा है वो लेके आपको ज़रूर डिस्काउंट करेगा, कुछ प्रीमियम पे लेगा, और वो भी किसी तरह वो दिखाएगा अपने बुक्स में कि मैंने ये जो बेचा है इस मैंने बेचा है और किसी ने मेरे को पैसे दिए हैं और वो जमा कराएगा. लेकिन ये इनकम टैक्स वाले यही देख रहे हैं ज़्यादातर कि जो जैसे ज्वेलर्स हैं या रियल एस्टेट के जो एजेंट्स हैं उनके ऊपर काफ़ी निगरानी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि नवंबर और दिसंबर के सेल्स कितने बढ़ रहे हैं. 30% 40% एकदम से ये दो महीने में कितने बढ़ेंगे. तो ये एक तरह का जो इनकम टैक्स ट्रेल जो कहते हैं वो देख रहे हैं. दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि वो जो लोग हैं अपना धन जो है उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट के 2-2 लाख करके अपने आप डालें या किसी और के डालें, तब भी उनका जो ट्रेल जो होता है वो लोग दिखाया जाएगा कि ये लोग ज़्यादा सडनली पैसा अपने बैंक अकाउंट में डाल रहे हैं, क्योंकि 2.5 लाख से ज़्यादा तो इनकम टैक्स वाले दिख रहे हैं. तो ये एक और वजह तरीका है जिससे वो लोग देखेंगे. तो ये दो तरीके हैं. तो सरकार ये सोच रही है कि इससे हमें ज़्यादा पता चलेगा कि हमारी जो पैरेलल इकोनॉमी वो कहाँ कहाँ है, जहाँ हमने नहीं सोचा वहाँ भी वो देखेंगे कि बैंक अकाउंट्स एकदम से बढ़ रहे हैं या रियल इस्टेट की खरीदारी ज़्यादा हो रही है या जेवरों की खरीदारी ज़्यादा हो रही है. तो इससे वो उनको पता चलेगा कैसे होगा.
जी हमारे साथ अगले कॉलर कौन जुड़े हैं देखते हैं. जी अपना नाम बताएं.
नमस्कार जी.
जी अपना नाम बताएं.
मैं ओम नमः शिवाय रेडियो श्रोता संघ मुकाम पोस्ट सगोरिया स्कूल घाटी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से बसंती लाल सूर्यवंशी बोल रहा हूँ मैम.
जी बसंती जी, आपने लुम्बा राम की बात सुनी थी, उनका कहना था कि वहाँ पर किसानों को बड़ी दिक्कतें आ रही हैं.
जी कुछ खोने के लिए कुछ पाना तो बहुत जरूरी है मैम. मैं आपके जरिए और आपके जैसे प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो काला धन को मतलब बिल्कुल रोक के रख दिया उन्होंने. बहुत ही अच्छा किया. हम किसानों के लिए फायदा है, गरीब लोगों के लिए भी बहुत फायदा है.
जी जी अपनी बात रखने के जी.
और कुछ परेशानी तो दिक्कत तो आती, थोड़ी बहुत तो दिक्कत का सामना तो करना पड़ेगा
जी. लेकिन ये सही कदम मान रहे हैं आप. अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. सुषमा रामचंद्रन जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी का कहना है कि चरमपंथियों को आर्थिक मदद में रोक लगेगी इससे, लेकिन नकली नोटों का जो कारोबार है वो चल ही रहा है आप जानती हैं, क्या नए नोटों का आना इन समूहों पर एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक माना जा रहा है?
हाँ, ये जो लफ्ज है बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है. हाँ समझ लीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक समझ लीजिए एक तरह का. लेकिन मैं तो समझती हूँ ये पूरा ये जंग है, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, ये जंग है. क्योंकि अगर आप देखें हमारी जो टोटल करेंसी है उसका 86% का जो हिस्सा है वो 500 और 1000 नोटों से चल रहा है. इसी वजह से उन्होंने ये कोशिश की थी कि ये इनको ये डीमोनेटाइज करने के लिए, क्योंकि जब पहले डीमोनेटाइजेशन हुआ था 1978 में हुआ है, तो तब उन्होंने 1000 रुपये के नोट्स को डीमोनेटाइज किया था. उस वक़्त वो 0.6% का हिस्सा था 100,000 रुपये के नोट. अब आप देखिए ये जो 500,000 के 86% हमारी ट्रांजैक्शंस इसी से हो रही हैं, तो इसका असर तो बहुत ज़्यादा है तब के मुकाबले में. तो ये जो इस वक्त जो एकदम से ये हुआ है, इसका मैं जैसे आपने कहा सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, इसको जंग समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा ये काम किया गया सरकार ने. और हालांकि मैंने कहा कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छी है.
जंग की आप बात कर रही हैं, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि कुछ जानकारों का ये मानना है कि काले धन की जो है बड़ी मछलियाँ ही जो है वो पकड़ से बाहर हैं, अभी छोटे जो साहूकार हैं या छोटे व्यापारी हैं वो इसमें ज़्यादा फंसते हुए नज़र आ रहे हैं. उन्होंने पैसा जो है सोना या फॉरेन एक्सचेंज या विदेशी मुद्रा के तौर पर देशों में जमा किया हुआ है. इस कदम का स्विस बैंक या पनामा बैंकों में जो जमा कथित रकम है उस पर किस तरह से असर पड़ेगा?
देखिए वो तो एक दूसरी बात है. वो दूसरी तरफ से कर रहे हैं, वित्त मंत्री कर रही है, मंत्रालय कर रही है, वो स्विस बैंक से उनकी बातचीत हो रही है. लेकिन अगर आप देखें स्टॉक मार्केट्स की तरफ, जब ये कदम लिया गया था 8 तारीख, तो जो रियल्टी सेक्टर के जो स्टॉक्स थे वो 12.5% नीचे गए थे. और दूसरी जो कंपनीज जो पनामा लीक आपको मालूम है जो कंपनीज जिनके लिंक्स हैं स्विस बैंक्स के साथ, उन कंपनीज का भी 2.5% उनका नीचे गया. हालांकि पूरा जो स्टॉक मार्केट था वो शायद 0.8% नीचे गया, लेकिन 2.5% ये कंपनीज नीचे गई हैं. तो असर तो हुआ है. इसका मतलब वो लॉन्ड्रिंग ऑफ मनी जो होता है, काला धन वहाँ जाके फिर वापस आ जाता है, उसका भी एक सिलसिला है जिससे ये इस कदम ने इसको कुछ इट हैज अफेक्टेड
जी. वहीं कुछ खबरें आ रही हैं कि ग्रे मार्केट ने ब्लैक को वाइट बदलने में कुछ तरीके निकाल लिए हैं. श्रोताओं को बता दें कि ग्रे मार्केट यानी वे मार्केट जो गैर कानूनी अनौपचारिक तरीके से ब्लैक मनी को वाइट बनाने का काम करते हैं, तो क्या ऐसा है, क्या इसका असर हो रहा है?
ये असर तो हो रहा है. अब देखिए, जब वो आपके आपके जो कॉलर्स हैं उन्होंने कहा कि हम 500 रुपए दे रहे हैं, हमें लोग 300 रुपए वापस दे रहे हैं, तो ये जो ग्रे मार्केट है ये थोड़े दिन चलेगा, और इसीलिए इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है. जब तक लोगों के हाथ में मतलब 500-1000 के नोट आ नहीं जाएंगे या 2000 के नोट आ नहीं जाएंगे, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, और ब्लैक मार्केट जो है जो ग्रे मार्केट वो चलता जाएगा. और इस वजह से सरकार को बहुत जल्दी उनको कदम उठाने चाहिए कि ताकि कि सारे एटीएम्स में करेंसी आ जाए.
जी, सरकार को काफ़ी सक्रिय और सतर्क रहने की ज़रूरत है. हम अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं. जी, कौन बोल रहे हैं?
हेलो, मैं संदीप बोल रहा हूँ.
जी संदीप जी, हम ग्रे मार्केट की बात कर रहे थे, आप सुनी रहे होंगे बहस, बताइए.
मुझे तो बहुत खुशी है कि सरकार ने ये काम किया, और मैं प्रधानमंत्री मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ. लेकिन एक सवाल मेरे मन में था जो मैं आपके अतिथि से पूछना चाहता हूँ.
जी बिल्कुल पूछिए.
कि जो बहुत ऐसे लोग हैं जो दुकानदार टाइप के लोग हैं या जिनके पास छोटा मोटा बिजनेस भी, वो भी बहुत टैक्स बचा कर रखते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए उनके पास आज भी हैं, उनके घरों में बोरे में जमे हुए हैं. लेकिन आज उसको ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का बहुत तरीका उनके पास आ गया. उनके यहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं. हो सकता है कि एक ही सबके हाथ में 2-2 लाख रुपए दे दें और सबके अकाउंट में जमा करवा दें, और वो पैसा फिर व्हाइट मनी के रूप में ले ले बाद में.
जी संदीप जी, सुषमा जी.
संदीप जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है. ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है. जो दुकानदार हैं वो ज़्यादातर का सेल्स टैक्स नहीं देते, एक्साइज टैक्स वगैरह टैक्स नहीं देते, और वो ज़्यादातर ये अपना पैसा कैश में अपने घर में रखते हैं. तो ये जो आपने बात कही कि ये शायद अपना पैसा 2-2 लाख आपस में बांट देंगे, हाँ ये ज़रूर हो सकता है. लेकिन फिर भी उनको ये डर है, अगर आप एक बंदे को 2 लाख देंगे, ज़रूरी नहीं कि वो बंदा आपको वापस दे देगा. पहली बात तो ये है. दूसरी बात ये है, इन्हीं चीज़ों के ऊपर इनकम टैक्स वाले नज़र रख रहे हैं कि आपका जो दुकानदार है उसके जो खास आसपास के दोस्त हैं, भाई बंधु हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बैंक अकाउंट्स में एकदम से पैसा बढ़ रहा है कि नहीं, ये निगरानी हो रही है. और इसी वजह से वो कह रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि ट्रेल जो है, जो पाथवे टू ब्लैक काला धन की तरफ, वो देखना चाह रहे हैं. और ये जैसे आपने कहा होगा, लेकिन इनकम टैक्स वाले शायद पकड़ लेंगे उनको.
जी, इनकम टैक्स वाले पकड़ लेंगे. यहाँ पर राजनीति की बात करते हैं. आपने तमाम तरह की विपक्षी पार्टियों की प्रतिक्रियाएं देखी हैं. बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह का कहना था कि बौखलाहट है, तो अगर कहा जाए तो ये बौखलाहट क्यों दिख रही है?
देखिए, ये आज आपने किसी पेपर में पढ़ा होगा, फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर किसी ने लिखा है कि ये जो कैश की तकलीफ है वो हर चुनाव में होती है, और जो भी इलेक्शन कमीशन है वो कोशिश यही करता है कि जहाँ वो निगरानी करे और पकड़े, जहाँ जहाँ वो ट्रक्स में, गाड़ियों में वो अपने ये कैश ले जाया जाता है. उन्होंने कहा कि कहीं एक दो बार हमने पकड़ा और उन्होंने कहा नहीं, हम तो ATM भरने के लिए जा रहे हैं, तो हमने उनको जाने दिया. तो ऐसे ऐसे तरीके होते हैं. और उन्होंने खास कहा कि ये जो कदम है ये बहुत अच्छा है, खासकर ये इलेक्शंस के चुनाव से पहले आ रहा है, और इससे जिन लोगों के पास जो लोग हैं जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी रकमें रखी हुई हैं, उनको वो क्या करेंगे इनके साथ. तो वो 2-2 लाख करके तो बहुत ही मुश्किल है. और इससे उन्होंने कहा कि ये हमारी चुनाव के ऊपर बहुत अच्छा असर होगा,
चुनाव पर असर अच्छा होगा. बहुत कम समय है सुषमा रामचंद्रन जी, आपसे बस आखिरी सवाल ये लेना चाहेंगे कि सरकार के इस कदम के बाद कहा जा रहा है कि महंगाई कम होगी, और आपने जैसे रियल स्टेट की बात की तो प्रॉपर्टी बाजार की कीमतें भी कम होंगी, इसमें कितनी सच्चाई दिखाई देती है संक्षेप में?
देखिए, ये तो बहुत लॉन्ग टर्म चीज़ है, ये एकदम नहीं होगा. पहले तो ये आपकी जो ये दिसंबर 30 तक, जब तक ये पूरे एक्सचेंज ऑफ करेंसी ना हो जाए, उसके बाद देखना क्या है कि इसका असर क्या होता है रियल एस्टेट के ऊपर और बाकी जो बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्रों के ऊपर. और लॉन्ग टर्म अगर पैरेलल इकोनॉमी कम हो जाए तो ज़रूर आर्थिक स्थिति हमारी अच्छी होगी और इन्फ्लेशन कम होगा.
और जो प्रॉपर्टी बाजार की बात जो हो रही है,
प्रॉपर्टी बाजार की जो बहुत ही कम होगा, क्योंकि रियल एस्टेट में आप देखें तो काला धन का जो हिस्सा है, अगर आप खरीदने जाएं तो 30% 40% है, आप इससे बच नहीं सकते. तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा, जो मतलब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपकी 40 लाख में मिल जाएगी।
जी, तो आज हम इंडिया बोल में बात कर रहे थे कि क्या सरकार के 500 और 1000 के नोट पर रोक लगाने से काला धन पर लगाम लगेगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुषमा रामचंद्रन मौजूद थी, बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं का भी आपसे 9:30 बजे घटना चक्र में फिर होगी मुलाकात, तब तक दीजिए इजाज़त।